हरि ओम हरि ओम हरि पवित्रायद्वाणी प्रविशति विचित्रहृदयदां तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटितम् स्मरामि प्रातस्तम् नयनरमणीयम् सुखकरम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्मपरमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरये शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 कल अष्टावक्र जी महाराज ने बताया था कि यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि तुम देह से देह को अलग करके और शुद्ध चैतन्य में विश्राम को प्राप्त हो जाओ, बैठ जाओ उसी में, तो अधुनैव अभी अभी बैठते ही सुखी तुम सुखी हो जाओगे, शांत शांत हो जाओगे, बंध मुक्ता बंधन से मुक्ति हो जाएगी, भविष्यसी हो जाएगी। अर्थात सब लोगों का रामबाण इलाज यही है कि इस देह से देह को अपने से पृथक कर लो। अब पुस्तक जैसी कोई चीज हो देह तो निकाल के अलग कर दें, ये तो ओतप्रोत कैसे अलग कर दो। तो बोले अलग है ये तो जान तो सकते हो कि ना, ये भी नहीं जान सकते, क्योंकि अगर देह से अलग हो जाएंगे तो देह मर जाएगा। अरे देह में चेतना जब तक है तभी तक तो ये जिंदा है, और अगर चैतन्य चेतना इससे अलग हो जाएगी, देह अलग हो जाएगा, तो मर जाएगा। तो बोले ठीक है, अपने देह को मत करो अलग, मगर कितने मुर्दे फूंके आए, तो उसमें तो मालूम पड़ गई ना कि देह तो यहीं रह गया, क्या चीज थी जो उसमें से निकल गई, अब चेतना नहीं है। उसके ऊपर चाहे लकड़ रख दो, मोटे मोटे लकड़ रख दो नारायण, फांस भी लग जाती है तो भी हाय हाय करता है आदमी, लेकिन मुर्दे के ऊपर मोटे मोटे लकड़ रख दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें जो अनुभव करने वाला है वो है ही नहीं। तो दूसरों को देख करके भी तो ज्ञान होता है, सब अपने ही ऊपर थोड़ी घटाने का। तो जैसे उनका शरीर अलग हो गया और उसमें से कोई चीज अलग थी वो चली गई, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी तो वैसा ही है, ये भी अलग हो जाएगा, अलग है, और जो इसमें ज्ञान है, चेतना है। नारायण, चेतना और चैतन्य इसमें थोड़ा सा भेद है। चैतन्य माने तो ज्ञान होता है और चेतना माने क्रिया होती है। तो जीवन का चिन्ह है ज्ञान और चेतना दोनों। चेतना इसमें छोड़ देती है, जब मुर्दा प्राण निकलते हैं ना, तो जिस हिस्से में से प्राण निकल जाते हैं, हमने तो पास बैठ करके देखा है मरते हुए आदमी को, जिस हिस्से में से प्राण निकल जाते हैं ना, बस वो चेतना शून्य हो जाता है, ना वो हिल सकता है, ना चांद इतना दबा उसे कोई कुछ महसूस ही नहीं होता। तो चेतना माने जो क्रिया शक्ति है वो उसकी शांत होती चली जाती है। फिर कहां चली जाती है वो क्रिया शक्ति? बोले जहां से निकली थी उसी में समाती जाती है। तो असल में ये ज्ञान शक्ति में से ही क्रिया शक्ति निकलती है। ये एक वस्तु के दो पहलू हैं, एक तरफ से देखो तो उसका नाम ज्ञान है और दूसरी तरफ से देखो तो उसका नाम क्रिया है। क्रिया का ज्ञान होता है, ज्ञान की क्रिया नहीं होती है। क्रिया का ज्ञान होता है, ज्ञान में क्रिया नहीं होती है। तो क्रिया का ज्ञान होता है, इसलिए क्रिया जो है वो ज्ञान के परतंत्र है। मैं चलता हूं, मैं नहीं चलता हूं, दोनों बातों का ज्ञान होता है। क्रियता और निष्क्रियता दोनों का ज्ञान होता है, इसलिए क्रिया नंबर दो पे है और ज्ञान नंबर एक पे है। ज्ञान क्रिया में कैसे बदल जाता है? बोले बदलता नहीं है, बस वो जैसे वो शादी ब्याह में वो लगाते हैं ना बिजली रोशनी बल्ब, तो साफ मालूम पड़ता है कि बिजली यहां से यहां तक चल रही है, लेकिन चलती है क्या? बुझती है, फिर यहां की बुझ गई, फिर यहां की जल गई, फिर यहां की बुझ गई, फिर यहां की जल गई। इतने टाइम गैप कम होता है उसमें कि ऐसा लगता है कि बिजली जो है चल रही है। तो नारायण इस ज्ञान के प्रवाह को ही क्रिया बोलते हैं, मालूम पड़ रहा है। एक्टिव ज्ञान, एक्टिव ज्ञान इज क्रिया। अच्छा, अब ये बात सोचने की है कि उस मुर्दा शरीर में से क्या निकल गया। तो परमात्मा नाम की वस्तु तो मुर्दे में भी है और जिंदा में भी है, और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान तो निकला नहीं उसमें से। लेकिन जो उसमें बल्ब लगे हुए थे जिसकी वजह से कि वो जला बंद हुआ, जला बंद हुआ, जला बंद हुआ, और ये मालूम पड़ रहा था कि बिजली चल रही है, वो बल्ब सुसरे फ्यूज हो गए सबके सब, बिजली तो है वो कैच नहीं कर रहे, हार्ट फेल हो गया सर, अब बड़ा बल्ब जो शुरू का था वही फ्यूज हो गया, फलानी जगह का कैंसर हो गया, तो ये जो मेजर आइटम्स हैं शरीर में, इनमें जब ये नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं विकारों के कारण, रोग के कारण, क्षय के कारण, प्रारब्ध क्षय के कारण, अच्छे भले आदमी भी मर जाते हैं तो उनका प्रारब्ध खत्म हो गया, तो बस वो कैच करना बंद कर देते हैं, मर गए। परमात्मा तो है वहां भी। अच्छा, अब ये एक बल्ब ऐसी है इसमें, उसको बोलते हैं अहंकार। ये सबसे मोटा बल्ब है, पहले यही कैच करता है। अब जैसे इस समय लाइट जल रही है तो दीवारें सब रोशन है, फर्श भी रोशन है। अब यहां एक कांच दर्पण रख दीजिए तो दर्पण पे भी ये रोशनी पड़ रही है, लेकिन क्या बस यही है? वो दर्पण में उसकी बल्ब की जो है वो आभास परछाई भी पड़ेगी, प्रतिबिंबन भी होगा उसका, उसकी वजह से वो झकाझक मालूम पड़ेगा दर्पण, और बाकी सब सामान्यतः प्रकाशित होंगे। तो ये अहंकार जो है, बुद्धि भी बोल देते हैं, अहंकार भी बोल देते हैं, अंतःकरण भी बोल देते हैं, ये सत्वगुण से बना हुआ होने के कारण इसमें रिफ्लेक्टिविटी बहुत है, चैतन्य को ग्रहण करने की शक्ति बहुत है। तो उस चैतन्य की शक्ति को ग्रहण करके वो चैतन्य इसमें आभासित होने लगता है, अर्थात ये भी चैतन्य जैसा मालूम पड़ने लगता है, जैसे दर्पण जो है वो स्वयं मालूम पड़ने लगता है कि प्रकाश है। ये दर्पण प्रकाश है कि प्रकाश में दर्पण है कि दर्पण में प्रकाश है? तो है तो अलग अलग ही, लेकिन बल्ब को जितना आप रोशनी को जितना दर्पण के निकट लेते जाएंगे, तैसे तैसे ही उनका जो अंतर है वो मालूम पड़ना बंद होता जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये दर्पण ही बल्ब बना हुआ है। तो ये अहंकार ही आत्मा जैसा लगने लगता है, परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, ये उसका आभास ग्रहण करके ऐसे लगने लगता है जैसे यही ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो ये 420 हुई कि नहीं? दूसरे के स्वरूप को अपना स्वरूप स्वीकार कर लेना। अब ये अहंकार का है ही ऐसा, अहंकार महाराष्ट्र बोलते थे, अहंकार माने अहम क्रियते। बोले अहम तो जो है कुछ करता है नहीं, अहम तो शुद्ध आत्मा है, तो वो तो सर्वव्यापक है, और उसमें जब क्रिया होती है एक जगह पर तो उसी क्रियाशील अहम को बोलते हैं अहंकार। और एक और मोटा उदाहरण देते थे, बोलते अहंकार माने अहम की कार। जैसे कोई आदमी अपनी कार पर सवार होता है तो ये उसकी कार है, बिना कार के वो कहीं जा नहीं सकता है। तो ये जो परमात्मा देव प्रत्येक शरीर में किस कार पर बैठ के चले उसी को अहंकार बोलते हैं। ये असल में मैनेजर है इस शरीर का, अहंकार जो है ये इस शरीर का मैनेजर है, प्रोप्राइटर नहीं है, इसके सीमित अधिकार हैं, व्यवस्थापक है ये। आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, सबको काम बांटता है, सबकी निगरानी रखता है, और सबके किए हुए को अपना किया हुआ स्वीकार कर लेता है। बात समझ में आ रही होगी? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। अब इसी को जो अपना स्वरूप मान लेता है तो वो तो कहने लगता है कि मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं, असल में तो अहंकार कर रहा है और जो साक्षी आत्मा है वो कर नहीं रहा है, वो तो सिर्फ उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन उसके प्रतिबिंब को ग्रहण करके ये कहता है मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं। कौन कहता है? दर्पण कहता है, अहंकार कहता है कि अहंकार में जो आभास है वो कहता है? अहंकार तो जड़ है तो आभास ही कहता है ना। अच्छा, आभास कह नहीं सकता, न तो वो शुद्ध चैतन्य है और न वो शुद्ध जड़ है। आप अपनी परछाई देखते हो रोजाना मुंह दर्पण में, तो न तो वो आप हो और न वो दर्पण है। दर्पण से भी अलग नहीं है और आपके मुख से भी भिन्न नहीं है। ऐसा नारायण ये अहंकार आभासित अहंकार है, इसको ही जीव बोलते हैं। जीव माने परमात्मा प्लस अहंकार प्लस अहंकार में परमात्मा का प्रतिबिंबन। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला बना रखा है, साधिष्ठान साभास अंतःकरण जीव। अब ये टेक्निकल शब्द आ गए ना, इसलिए ये थोड़ा जो समझते हैं उनके लिए तो आसान है। अधिष्ठान के सहित माने परमात्मा के सहित अंतःकरण और उसमें पड़ा हुआ उस परमात्मा का चैतन्य का आभास प्रतिबिंब, इन तीनों को मिला करके जीव बोलते हैं। यही करता है यही भोगता है। तो निकला कौन शरीर में से? आभास सहित अंतःकरण निकलता है, आभास सहित सूक्ष्म शरीर निकलता है, आभास सहित अहंकार निकलता है। कहां जाएगा निकल के? बोले जैसी उसकी वासना है। ये नियम किसने बना दिया? बोले ईश्वर ने बना दिया। उस अपने नियम का पालन कैसे करवाता है? बोले उसे करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है। इच्छा ही उसका कर्म है नारायण, उसे माया वाया की कोई जरूरत नहीं है। इच्छा हुई तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएव, उसने ईक्षण किया संकल्प किया बहुत सी प्रजा बहुत रूपों में मैं उत्पन्न हो जाऊं, हो गए। कोई कर्म नहीं किया। जैसे स्वप्न में होता है, जैसे जैसे आपके मन में संकल्प उदय होते जाते हैं वैसे ही वो दिखते चले जाते। ईश्वर की दृष्टि से देखो तो सब कुछ दिख रहा है, दिखना मात्र है। और इधर से देखो अपनी तरफ से तो ईश्वर संकल्प कर रहा है, माया उसको कार्यान्वित कर रही है, जीव उसको भोग रहा है, जड़ और चेतन सब इसमें विभाग बना हुआ है। हम कहां खड़े होकर देखते हैं इसके ऊपर सब निर्भर करता है। तो अच्छा, ये उपदेश किसको हो रहा है? शुद्ध चैतन्य को हो रहा है क्या? जड़ अहंकार को हो रहा है क्या? किसको हो रहा है? जीव ही को हो रहा है, जो न शुद्ध चैतन्य है न जो शुद्ध जड़ है। क्या हो रहा है? कि इस दर्पण को अपने बट्टे खाते में डाल, ये देख मैं आभास किसका हूं। जिसका मैं आभास हूं वो परिपूर्ण सत्ता है नारायण। अच्छा, आभास में और यानी प्रतिबिंब में और बिंब में सिमिलर तो होते हैं, सिमिलर न हो तो फिर दर्पण रखने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही मैं हूं, लेकिन ये दर्पण नहीं कहता, प्रतिबिंब भी नहीं कहता, बिंब ही कहता है जो देख रहा है। हाँ, जैसा प्रतिबिंब दिख रहा है ऐसा ही मैं हूं, ये कैसा जान लिया तुमने? बोले दूसरे की गवाही से। दूसरा आदमी देख रहा है, आप भी अपना मुंह देख रहे हो और दूसरा आदमी आपका बिंब भी देख रहा है, मुंह भी देख रहा है और प्रतिबिंब भी देख रहा है। वो कहते हाँ ठीक है, ऐसा ही तुम्हारा मुंह है। उसकी गवाही से मैं प्रतिबिंब को अपना वास्तविक मुख की आकृति समझता हूं। अजीब हालत है नारायण, ना अपना किसी ने पैदा होना देखा, ना कोई अपना मरना देख सकता है। देखेगा कौन अगर मर जाएगा तो? नारायण, दूसरे की गवाही से मानते हैं, तुम फलाने दिन पैदा हुए थे। कौन कह रहा था? हमारी अम्मा कह रही। अम्मा से पूछा के तुम्हें कैसे मालूम है मैं फलाने दिन पैदा हूं? फलाने को ब्याह हो तो वादन तू इतने दिन को। अब लगा ले हिसाब, पहले तो सब ऐसे ही हिसाब लगाते थे ना, घड़ी नहीं थी, कैलेंडर नहीं थे, अब मानते हैं हॉस्पिटल की गवाही, बच्चे बदल जाते हैं, बाप बदल गए, मां बदल गई, सब मान्यताओं के ऊपर चल रहा है। तो संसार चलाने के लिए कोई सच्चे होना जरूरी नहीं है। इस बात की सच्चाई को समझ लें तो इसमें जो सुख दुख होते हैं वो सब ढीले पड़ जाएंगे। तो देह को पृथक करना क्या है कि मैं तो आभास नहीं हूं, साक्षी हूं। ये कहा जा रहा है आभास से, तू आभास नहीं है, जिसमें तू आभास है वो भी तू नहीं है, तू तो बिंब है। बस देह से अलग हो गए, इतने ही से अलग हो जाते हैं। अच्छा, समस्याएं कहां पे हैं? स्थूल शरीर में है कि सूक्ष्म शरीर में है कि आत्मा में है, कहां है? तो कुछ स्थूल शरीर में है, रोग आदि जो है, कुछ सूक्ष्म शरीर में है, मान है, अपमान है, सुख है, दुख है। और कुछ बेवकूफी में, कारण शरीर में। आत्मा तो शुद्ध का शुद्ध है। तो हम क्यों दुखी हैं? बोले सूक्ष्म शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं। हम क्यों अशांत हैं? क्योंकि वासनाओं को हम अपनी मानते हैं। और क्या है, क्यों बंधन में है? क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बंधन को हम अपना बंधन मानते हैं। एक बात सुनी आप लोगों ने भी होगी, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो जितने भी कर्तावाद हैं वो सब यही मानते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु भोगने में परतंत्र है। कर तो कुछ भी सकता है, लेकिन जब उसका फल आएगा तो वो आपको भोगना पड़ेगा। करने में स्वतंत्र है और भोगने में परतंत्र है। अच्छा, कौन करेगा? व्यवस्थापक करेगा ना, मैनेजर। तो अहंकार करता है नारायण, और भोक्ता कौन है? भोक्ता भी अहंकार ही है, लेकिन प्रोप्राइटर जो है मालिक, वो कहता है कि मैं तो मर गया, इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, इस मैनेजर को निकालो। निकाल पाता नहीं, प्रारब्ध जब तक खत्म नहीं होगा वही रहेगा मैनेजर। तो हमें पूरी जिंदगी के लिए दुख हो गया उसके लिए। तो इसका एक ही इलाज है। महाराज जी तो ऐसे बोलते थे कि वेदांत में छोड़ना, पकड़ना, त्यागना, ये ऐसे नहीं होता जैसे हम स्थूल वस्तुओं को छोड़ते, पकड़ते, त्यागते। बोले ऐसे होता है कि जैसे ब्याह किया और फिर तलाक हो गया। ब्याह किया तो ये पकड़ना हो गया और तलाक हो गया, छोड़ दिया। तलाक के बाद एक दूसरे को देखते नहीं क्या? लेकिन वो संबंध भाव तो उदय नहीं होता। स्मृति तो हो सकती है लेकिन संबंध भाव तो उदय नहीं होगा, और उदय भी होगा तो उसके अनुसार कर्म नहीं होगा। बस कल जो आप पूछ रहे थे ना, व्यवहार व्यवहार के संबंध में, कि फिर व्यवहार कैसे होगा? तो जैसे तलाकशुदा का व्यवहार होता है ऐसे ही होता है। इस शरीर को इस समय हमने ब्याह किया हुआ है, अब मन से इसको तलाक दे दो तो रहेगा जैसे का तैसा ही। ज्ञान में कोई चीज नष्ट नहीं होती है, सिर्फ अपने संबंध का त्याग होता है। संबंध में भी आत्म रूप से जो गलत संबंध माना हुआ है उसका त्याग होता है। आभास का तो संबंध रहेगा, अहंकार का तो संबंध रहेगा, लेकिन जो बिंब है, साक्षी है, उसका संबंध नहीं है। पहले भी नहीं था, गलती से ही मान रहा था मैं, और अब तो मैं पक्का ही समझ गया हूं कि मैं साक्षी हूं, इसलिए अब भी नहीं है। तो ये मिनी वर्ल्ड है, ये प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है ये मिनी वर्ल्ड है ना, इसमें सब वही काम हो रहे हैं जो पूरे संसार में हो रहे हैं। जैसे ये भी महाराज जी बोलते थे कि तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। क्यों? बोले जब तीर्थ में जाते हैं तो वहां बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, जंगल देखते हैं, नारायण जानवर देखते हैं, तो ये लगता है कि हमने तो बनाए नहीं है। फिर किसने बनाए? और सबको वहां भी भोजन मिल रहा है जो जीव जंतु हैं, पानी अपनी गति से बह रहे हैं, वहां भी जीवन चल रहा है। तो एक ईश्वर सत्ता में विश्वास होता है, तो जैसे वहां जाके ईश्वर सत्ता में विश्वास होता है, ऐसे ही यदि आप अपने शरीर में देख लें तो यहां आत्मदेव में विश्वास हो जाएगा। हमने तो बनाया नहीं, माने जीव तो इसका रचयिता नहीं है, पंचभूतों का बना हुआ है। पंचभूत बनाए क्या हमने? वो तो सिर्फ हमारी कामनाओं से, जैसे चुंबक के चारों ओर लोहे के कण अपने आप जाकर चिपक जाते हैं, बस जिस व्यक्ति की जैसी कामना थी ये जो पंचभूत है ये आकर चिपक गए। सूक्ष्म पंचभूत से सूक्ष्म शरीर बन गया और स्थूल पंचभूतों से स्थूल बन गया। तो चिपके रहें तो तुम्हारा क्या, जब तक उसका चुंबकत्व तो है तब तक चिपके रहेंगे, जहां चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा अपने आप जड़ जाएंगे। अपने आप ही आए थे और अपने आप ही चले जाएंगे, न अपनी खुशी आए थे न अपनी खुशी चले। ये तो महात्मा का यही दृष्टिकोण रहता है, जो होना है सो होगा, उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि हरिद्वार से हम आ रहे थे, संस्मरण महाराज जी का, हरिद्वार से आ रहे थे तो क्योंकि एक तो मैं था और एक ये स्वरूपानंद जी जो आजकल शंकराचार्य हैं ये थे और एक अवधूत थे, तो तीनों के तीनों खूब मोटे। तो पैदल पैदल चल के चले आ रहे। अब हो गई शाम एक गांव में, तो बोले भाई यहीं कहीं रात को रुकना चाहिए, रात में पैदल नहीं चलते हैं। तो आश्रय देखते हुए जा रहे थे, कहीं धर्मशाला हो कोई हो, तो सामने कोई आर्य समाजी मिल गए। ना आर्य समाजियों के साधुओं में अच्छी बात दृष्टि नहीं होती, तो तीनों मोटे मोटे देख करके वो बोले कि किस चक्की का खाते हो। महाराज जी ने कहा कि बेफिक्री की चक्की का खाते हैं। बोले आज कहां धावा है कि आज तुम्हारे ही घर धावा है। अच्छा ऐसा है, चलिए महाराज चलिए। दिमाग या भोजन कराया, रात को सोने की व्यवस्था करी। तो नारायण ये ईश्वर जो है ना, ये इसकी दुनिया है, ये सब व्यवस्था उसने पहले कर रखी है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, बस इसी वजह से ये मनुष्य परेशान। सारा वेदांत जो है इसी बात को समझाने में प्रवृत्त है कि ये जो तुम अपने को कर्ता भोक्ता मानते हो, तो ऐसा जानो कि कर्ता भोक्ता जो है इस शरीर में वो तुम नहीं हो। ये नहीं कहते हैं कि इस शरीर में कोई कर्ता भोक्ता ही नहीं है, जो है वो तुम नहीं हो, वो तो मैं हूं ही नहीं। कौन है तो पूरी गीता उठा के पढ़ जाओ, कितनी लोट बिलैया ली हैं भगवान ने। कहीं कहते हैं प्रकृति कर्ता करती है, प्रकृति वही कर्माणी, कहीं कहते हैं गुण कर्म गुणागुणेश वर्तन्ते नारायण, कहीं कहते हैं कि मैं ही सारी जगत की रचना करता हूं, कहीं कहती हैं मैं अध्यक्षेण, मैं रचना नहीं करता हूं, मेरी तो अध्यक्षता होती है, प्रकृति सूयत है, प्रकृति से चलता है। तो बाबा एक सिद्धांत बताओ ना कि कौन करता है। अरे बोले कोई करता हो तो बताओ। शंकराचार्य भगवान ने एक जगह लिखा है कि ये उपनिषदों में कई प्रकार से सृष्टि का वर्णन आता है, तो ऐसा क्यों है, एक प्रक्रिया बतानी चाहिए ना कि ऐसा सृष्टि हुई। तो इसका एक ही यही उत्तर है कि श्रुति का तात्पर्य ये बताने में नहीं है कि सृष्टि की रचना हुई, ये बताने में तात्पर्य है कि ब्रह्म से भिन्न सृष्टि की कोई रचना हुई ही नहीं, ब्रह्म ही इस सृष्टि के रूप में दिख रहा है। बताओ रस्सी ने सांप कैसे पैदा किया। अरे रस्सी ने तो पैदा ही नहीं किया, दिख रहा है। तो न त्वं विप्राधिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। तुम विप्र आदि वर्णी नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अभिमान करने वाले तुम नहीं हो। ये शरीर ब्राह्मण होता है कि इसके अलग कोई और चीज है जो ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण से पैदा हुआ वो ब्राह्मण, तो पैदा तो शरीर होता है ना, तो तुम स्थूल शरीर नहीं हो, तो फिर क्यों कहते इसमें रच रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूं? हां, तुम्हें कर्म करना हो ब्राह्मण का तो अपने को ब्राह्मण मानो। अब इतना तो हिंदू सभी जानते हैं कि जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक उसे कहां मालूम है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। उस दिन उसे बताया जाता है, बेटा तुम द्विज हो, हम ब्राह्मण हैं, हमारे ये कर्तव्य है, नारायण रोज संध्या करना, ये करना, वो करना। तो नत्वम विप्रादिको वर्णी वर्णो, ये विप्रादिक वर्ण तुम नहीं हो, और न आश्रमी, आप ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थी हैं कि सन्यासी हैं कि वानप्रस्थी हैं, कौन है? बोले एक अभिमान को काटने के लिए दूसरा अभिमान उत्पन्न किया जाता है। पहले ब्रह्मचारी थे, बोले कहीं यही अभिमान पक्का ना हो जाए, तो बोले या तो तुम सन्यासी हो और नहीं तो गृहस्थी हो, ये लिखा है शास्त्र में कि एक दिन भी कोई बिना आश्रम स्वीकार किए हुए ना रहे। ये नहीं कि हम सन्यासी भी नहीं होंगे और गृहस्थ आश्रम में भी नहीं जाएंगे, एक ही कंडीशन है नारायण, या तो ब्रह्मचर्य के बाद आप गृहस्थ हो नहीं तो आप सन्यासी हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं उसे। अच्छा गृहस्थी बन गए तो बोले कि अब कहीं यही अभिमान पक्का ना हो जाए, बोले नहीं नहीं अभी तो तुम्हें वानप्रस्थी होना, अब मैं गृहस्थी नहीं हूं वानप्रस्थी हूं, ये अभिमान आ गया। बोले अब वानप्रस्थी भी नहीं रहना सन्यासी होना, वानप्रस्थी भी छूट गए, अब नया अभिमान आ गया मैं सन्यासी हूं, अब ये छूटना चाहिए कि नहीं छूटना चाहिए? तो ये तत्व ज्ञान से ही छूटता है, ये छोड़ने के लिए नहीं है, ये छूट जाता है जब हम जानेंगे कि मैं तो साक्षात परब्रह्म हूं नारायण। उसमें ये छोटे छोटे अभिमान जो हैं सब मिथ्या कोटि के हैं, तो इनमें जो अभिनिवेश है वो समाप्त हो जाता है। तो नत्व तो स्थूल शरीर को लेकर के ये वर्ण और आश्रम होते हैं, इसलिए ये तुम नहीं हो क्योंकि तुम स्थूल शरीर नहीं हो, न अक्ष इंद्रियां भी तुम नहीं हो, न अक्ष गोचरा और न इंद्रियों से जाने वाली जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है बाहर, न ये हो। तो पूरा संसार आ गया कि नहीं? विषय आ गए, विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां आ गई, इंद्रियों को ग्रहण करने वाली मन आ गया, बुद्धि आ गई। अरे तुम असंगोसी, तुम असंग हो भाई, चिपको मत। एक आंदोलन चला था ना चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में लोग जाकर पेड़ काट रहे थे तो पेड़ बचाने वाले लोग जो है जाकर पेड़ों से चिपक जाते थे कि अब काटो इसको, हमको काटो पहले, तो चिपको आंदोलन उसका नाम था। तो बोले तुम चिपक सकते ही नहीं हो, चिपकना चाहो तो भी नहीं चिपक सकते, असंग हो। जो असंग वस्तु होती है वो किसी से चिपक नहीं सकती। अभी तो जो टेप चल रही थी महाराज जी की, उसमें बता रहे हैं ना कि वो चिड़िया पकड़ने के लिए गोंद लगा देते हैं। अब अगर गोंद नहीं लगा हुआ है तो काहे को चिपकेगी वो चिड़िया, भले ही लालच में पकड़ ले उसको, लेकिन गोंद ना हो तो चिपकेगी नहीं। ऐसे यदि आसक्ति का गोंद नहीं है, चिपकन कोई नहीं लगा रखी आपने, अब तो फेविकॉल लगाते हैं, साधारण गोंद से काम नहीं चलता। एक इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, फिर भी नहीं हट रहा है। जैसे ही तो एडवर्टाइजमेंट आता था पहले फेविकॉल का। तो शास्त्र कहें, संत कहें, अपना बुद्धि भी कहे कि यार तुम कहां चिपक गए, छोड़ो। बोले नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते अच्छा अब हम ही छोड़ाएंगे। मृत्यु से ही छूटता। तुम असंग हो नारायण, निराकार हो। ये शरीर तो आकार वाला है, सूक्ष्म शरीर का क्या आकार है? स्थूल शरीर का तो दिख ही रहा है सबको, सूक्ष्म शरीर का क्या आकार है? तो तैतरीय उपनिषद में लिखा है जैसा स्थूल शरीर का आकार है अन्नमय का, वैसे ही प्राणमय का है, वैसे ही मनोमय का है, वैसे ही विज्ञानमय का है। वो तो जैसा सांचा होता है उसमें जो चीज डाली जाएगी वो बाहर वाले सांचे की शक्ल का ही निकलेगा। तो ये अभिनिवेश जो हो गया है ये बाह्य शरीर के आकार का हो गया है, इसलिए मरते समय जो प्रेत आत्मा इसमें से निकलती है ना, प्रेत शब्द से घबराइएगा नहीं, उसको प्रेत आत्मा बोलते हैं जो आतिवाहिक शरीर बनकर बाहर जाता है। तो वो जो प्रेत आत्मा है उसका शरीर ऐसा ही होता है जैसे स्थूल शरीर का है। जाने वाला यही समझता है मैं तो स्त्री शरीर हूं, मैं तो पुरुष शरीर हूं। और अगर कोई फोटो उसका हो सकता होता, जैसा कि कुछ लोग क्लेम करते हैं, होता नहीं है फोटो, लेकिन इंग्लैंड में कोई पहले संस्था थी तो वो क्लेम करते थे कि सूक्ष्म शरीर का फोटो, गीता प्रेस वालों ने उसको छपवाया भी था अपने पुनर्जन्म अंक में। तो जैसा स्थूल शरीर का आकृति है वैसे ही उसके सूक्ष्म शरीर की आकृति है। बस एक गलती कर गए वो वहीं पर पकड़े गए नारायण। और वो गलती क्या कर गए कि उन्होंने कहा कि मरते हुए आदमी को एक शीशे के बक्स में बंद कर दिया कांच के, और जब उसके प्राण निकले तो वो सूक्ष्म शरीर उस शीशे को फोड़ करके निकल गया। बाहर वहां कैमरा लगा हुआ था तो उसने उसका फोटो लिया। अब हमारे शास्त्र के अनुसार यहीं फंस गए हो, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म पंचभूतों का बना होता है, वो उनका कोई फोटो हो नहीं सकता। फोटो तो जो पंचीकृत भूत है उन्हीं का हो सकता है। तो वो वहां के लिए ऐसा है कि जो अंधों में काने सरदार हैं वो सब ठीक है। असंगोष, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म शरीर का आकार है कैसा है कि जो स्थूल शरीर का है। पहले कौन सा शरीर बनता है? सूक्ष्म शरीर पहले बनता है नारायण, फिर उसके हिसाब से स्थूल शरीर बन जाता है। अच्छा तो सूक्ष्म शरीर का कैसे बना, उसमें आकार कहां से आया? ये बिल्कुल जैसे गर्भ में होता है उसी तरह से है सारा। कहां से आ गया आकार उसमें? बोले वो तो बीज में से ही आएगा। बीज क्या है इसका? कारण शरीर, कारण शरीर में नारायण सारे बीज भरे पड़े हैं। कभी हम कुत्ते भी रहे हैं, कभी हम बिल्ली भी रहे हैं, कभी हम पक्षी भी रहे हैं। अब पता नहीं भगवान कौन सा बीज आगे को सरका दे, जौन सा बीज सरका देंगे उसी की आकृति बननी शुरू हो जाएगी। तो कारण शरीर तक ये संसार है। कारण शरीर जो है वो केवल तत्व ज्ञान से नष्ट होता है, उपासना से सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है और कर्म से स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वो शुद्ध होता है। तो कर्मोपासना का इतना ही वेदांत में उपयोग है कि वो आपके बुद्धि को शुद्ध कर दे, आपके जीवन को शुद्ध कर दे। धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तयेवासि सर्वदा। धर्म अधर्म माने पाप और पुण्य, और सुख और दुख उनका जो फल है पाप और पुण्य का। मानसानि ये सब मन में मालूम पड़ते हैं, न ते तुम में नहीं है, अर्थात तुम आत्मा में साक्षी में नहीं है। हे विभो तुम तो सर्वव्यापक हो ना रहे, सर्वव्यापक वस्तु में ये छोटी छोटी चीजें कहां से आई। न करता से तुम करता ही नहीं हो तो धर्म धर्म कहां से आया। तुम भोगता ही नहीं हो, न भोगता से तो सुख दुख किसको होगा। मुक्त है वासी सर्वदा, इसलिए मैं बद्ध हूं, इस भावना को छोड़ो। मैं तो नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, आत्मा हूं। अब इसका नाम नारायण अष्टावक्र गीता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है तो वो भगवान का गाया हुआ गीत है। ऐसे ही ये अष्टावक्र जी के द्वारा गाया हुआ गीत है, इसलिए इसका नाम भगवत गीता है। तो इसको गागा करके ही पढ़ना चाहिए माने रस लेते हुए पढ़ना चाहिए। अब जैसे ब्रह्माष्टमी माला है ना, निधिध्यासन के लिए हैं ये सब श्लोक, अब ऐसे ही पढ़ लो तो संस्कार नहीं बनाएगा। इसको आप थोड़ा तरन्नम के साथ पढ़ें, रस लेते हुए पढ़ें, एक ही श्लोक भी सारे दिन के लिए पर्याप्त। और अनुवाद जो है वो जिसने भी किया है अनुवाद, उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा फर्क है, तो एक दफे अनुवाद पढ़ लीजिए और फिर स्वयं उसका मन में चिंतन कीजिए, आपको अपना ही अर्थ निकलेगा। और वो आप में संस्कार डालेगा, पाचन होगा। अब भोले बाबा का नाम तो आपने सुना होगा, उनका ग्रंथ भी आजकल चल रहा है, ये क्या नाम है, गीता का जो स्वाध्याय में चल रहा है ना, उसका जो शंकरानंदी जो टीका है उसकी जो हिंदी की है वही तो भोले बाबा ने तो किया ना। एक समय था नारायण जब ये भोले बाबा जी ने इस पूरी अष्टावक्र गीता का छंदों में अनुवाद किया था, तो जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो श्लोक याद नहीं होते थे, तो हिंदी में उन्होंने छंद याद कर लिए थे। वेदांत छंदावली के नाम से ग्रंथ प्रकाशित है। अब देखो ये कुछ वानगी आपको मैं दे रहा हूं, थोड़ा गीता हो जाएगी गायन हो जाएगा। जो श्लोक अभी हुए हैं ना उन्हीं का ये अनुवाद है। जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तजतात रे, आर जब क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। जो का क्यों ही अनुवाद है ना, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जाव जर हो जा अमर। पृथ्वी नहीं जल भी नहीं, नहीं अग्नि नहीं तू है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा, निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा अमर। चैतन्य को कर भिन्न तन से, चैतन्य को कर भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छुट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर, संबंध तज दे देह से हो जा अजर हो जा अमर। नहीं धर्म है न अधर्म तुझ में, दुख सुख भी लेश ना है, ये सभी अज्ञान में कर्तापना भोक्तापना। तू एक दृष्टा सर्व का, इस दृश्य से है दूरतर, पहचान अपने आप को हो जाव जर हो जाव अमर। आज तक के श्लोकों का अनुवाद दारे। तो प्रभु जी, अब ये तो अष्टावक्र जी की गीता है और ये भी चाल से चलती है और ये भी बोलते हैं ना, पता नहीं आजकल क्या बोलते हैं, टेलरिंग सिखाते थे ना, तो एक तो कुर्ते आजकल सीधे यूं ही काट देते हैं और एक वो कली के कुर्ते जो बनते हैं तो उसमें टेढ़ी काट करनी पड़ती है, पर छोड़नी पड़ती है। और ये भी बोलते हैं धुनि अवरेव कवित गुण जाति, रामायण में ये अवरेवी चौपाइयां भी बहुत है ना। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।